स्वागत। आज हम दिए गए स्रोतों के जरिए डेटा हैंडलिंग अध्याय के जरूरी हिस्सों पर एक नज़र डालते हैं। मिशन है ये समझना कि ये जो जानकारी बिखरी होती है, मतलब डेटा, उसे इकट्ठा कैसे करें, सजाएं कैसे, दिखाएं कैसे, और फिर उससे मतलब कैसे निकालें।
स्रोतों में EBI जैसे किसी सहायक का भी जिक्र है, शायद डेटा समझने में मदद करता हो।
बिल्कुल, डेटा तो हर तरफ है ना। क्रिकेट में कौन चलेगा से लेकर दुकान में क्या बिकेगा, सब डेटा पर ही तो निर्भर करता है।
ये अध्याय हमें इसी डेटा में छुपी कहानी पढ़ना सिखाता है। असल में आज हम इन तरीकों की मतलब बुनियाद को समझेंगे।
हाँ, सोचिए ना, क्लास में पूछा जाए कि फेवरेट खेल कौन सा है और सब एक साथ चिल्लाने लगे, बस वही सारी जानकारी एकदम गड़बड़ हो जाती है।
हाँ, बिल्कुल,
यहीं पर डेटा हैंडलिंग काम आता है। डेटा मतलब बस कुछ तथ्य या जानकारी, अंक, शब्द, माप, कुछ भी हो सकता है।
और शुरू में ये बिल्कुल बेतरतीब होता है, जिसे रॉ डेटा कहते हैं।
सही।
और इसे तरतीब देना मतलब ऑर्गेनाइज करना, इसीलिए जरूरी है ताकि इसमें छुपे पैटर्न नजर आ सकें। कमाल की बात है, 1660 के दशक में जॉन ग्रांट ने सिर्फ जन्म मृत्यु के आंकड़ों को टेबल्स में डालकर ही आबादी के रुझान समझ लिए थे।
अरे वाह।
हाँ, ये दिखाता है कि साधारण तरीके से ऑर्गेनाइज करने में ही कितनी ताकत है।
तो पहला कदम है डेटा कलेक्ट करना, सर्वे से, पूछकर, इंटरव्यू से वगैरह। फिर बारी आती है उसे ऑर्गेनाइज करने की। रॉ डेटा को संभालने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका है टैलीमार्क्स का इस्तेमाल।
बिल्कुल,
टैलीमार्क्स गिनती का एक बहुत ही सरल और कह सकते हैं सदियों पुराना तरीका है। चार सीधी लाइनें,
हाँ,
और पांचवी गिनती के लिए एक तिरछी लाइन जो उन चारों को काट दे। इससे बड़ी संख्याओं को गिनना भी आसान हो जाता है।
अच्छा,
मान लीजिए 20 बच्चों से उनकी पसंदीदा आइसक्रीम पूछी, तो रॉ डेटा कुछ ऐसा होगा, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, फिर चॉकलेट, फिर वनीला, ऐसे ही। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि कुल कितने तरह के जवाब हैं, ऑब्जर्वेशंस जिन्हें कहते हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, शायद बटरस्कॉच भी हो। फिर हर एक के लिए टैली मार्क्स लगाते जाते हैं। जैसे अगर चॉकलेट 8 बार आया तो उसके आगे लिख देंगे।
सही।
और आखिर में बनती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
हाँ, टेबल।
इसमें तीन हिस्से होते हैं, ऑब्जर्वेशन जैसे आइसक्रीम का नाम,
हाँ,
फिर टैली मार्क्स, और आखिर में फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार आया। जैसे चॉकलेट की फ्रीक्वेंसी हुई 8।
अच्छा,
इस टेबल को देखते ही मतलब एक सेकंड में पता चल जाता है कि भाई चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद की गई। ये रॉ डेटा को एक मतलब देता है।
सही कहा।
अच्छा, डेटा टेबल में सज तो गया, पर उसे दिखाने के और भी दिलचस्प तरीके हैं। एक है पिक्टोग्राफ।
हाँ, पिक्टोग्राफ,
जिसमें जानकारी दिखाने के लिए तस्वीरों या सिंबल्स का इस्तेमाल होता है।
बिल्कुल, और पिक्टोग्राफ में सबसे जरूरी चीज है उसकी की या स्केल।
की, हाँ,
ये बताता है कि एक सिंबल का मतलब कितना है। मान लीजिए अलग अलग क्लास ने पौधे लगाए, क्लास 6 से 40, 6B 50, 6C 35। अगर की है इज इक्वल टू 10 पौधे, तो 6A के लिए 4 पेड़ के चित्र बनाने होंगे।
अच्छा, 4 चित्र।
6B के लिए 5 और 6C के लिए 3.5 चित्र, मतलब 3 पूरे और 1 आधा।
ओ, आधा भी।
हाँ, बिना की के पिक्टोग्राफ सिर्फ सुंदर चित्र हैं, जानकारी नहीं देते वो।
हाँ, ये की तो वाकई बहुत जरूरी है।
अच्छा, एक और बहुत जाना पहचाना तरीका है बार ग्राफ या बार चार्ट।
हाँ, बार ग्राफ।
इसमें वो आयताकार यानी रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं ना, जिनकी लंबाई या ऊंचाई डाटा की मात्रा बताती है।
ये तुलना करने के लिए तो मुझे लगता है बेहतरीन है।
सही का, तुलना के लिए तो एकदम स्पष्ट। बार ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एक नीचे वाला हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस।
हाँ, एक्स एक्सिस,
जिस पर आमतौर पर कैटेगरीज होती हैं जैसे सब्जेक्ट्स, और एक खड़ा वर्टिकल वाई एक्सिस जिस पर संख्याएं या वैल्यूज होती हैं जैसे मार्क्स।
ओके,
ये एक्सिस पर एक सही स्केल चुनना बहुत जरूरी है, जैसे 1 unit = 10 मार्क्स। और हाँ, ये भी ध्यान रखना होता है कि सारे बार्स की चौड़ाई एक जैसी हो और उनके बीच की दूरी भी बराबर हो, तभी तुलना सही दिखती है।
अच्छा, ये जरूरी है।
बिल्कुल, जैसे प्रिया के मार्क्स वाला उदाहरण लें, इंग्लिश 75, हिंदी 80, मैथ 95, तो उसमें मैथ का बार सबसे ऊंचा दिखेगा। साफ पता चलता है कि मैथ में प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा।
एकदम साफ। तो ये तरीके, टेबल्स, पिक्टोग्राफ्स, बार ग्राफ्स, असल में हमें डेटा को एनालाइज करने में मदद करते हैं।
बिल्कुल,
कौन सबसे ज्यादा, कौन सबसे कम, कुल कितना है, या दो चीजों में क्या फर्क है, ये सब आसानी से दिख जाता है। जैसे फल वाले की बिक्री देखकर बता सकते हैं कि भाई किस दिन केले ज्यादा बिके।
सही। और ये सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये समझना जरूरी है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
डॉक्टर मरीजों का डेटा देखते हैं, वैज्ञानिक अपने प्रयोगों का, कंपनियां बिक्री का डेटा देखती हैं, यहां तक कि गेम डिजाइनर भी प्लेयर्स के डेटा का इस्तेमाल करते हैं गेम्स को बेहतर बनाने के लिए। असल में ये हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बेहतर फैसले लेने में मदद करता है।
सही।
शायद वो जो EB.AI जैसे टूल्स का जिक्र था, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन और विजुअलाइजेशन को बड़े पैमाने पर करते होंगे, पर बुनियाद तो यही रहती है।
हाँ, बुनियाद यही है। तो आज हमने समझा कि कैसे रॉ डेटा को इकट्ठा करके टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी टेबल से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और फिर पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ से उसे देखा और समझा जाता है।
मतलब डेटा को कहानी कहने लायक बनाया जाता है।
बिल्कुल सही। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात।
हाँ।
अगर किसी स्कूल के मान लो 1000 बच्चों की हाइट का डेटा हो, जो 120 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच रहे, तो क्या हर एक सेंटीमीटर के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना ठीक रहेगा?
ओ, 1000 बच्चे और इतनी सारी हाइट्स, तो इतने सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता है क्या? सोचने वाली बात है।